नमस्कार भारत, 4 जून दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर जा रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान की पैनी नजर। मथुरा में हुई हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी जारी, भाजपा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरा।
पहले जमीन पर कब्जा कराओ और फिर अपने जो गुर्गे हैं उनसे पुलिस पर गोली चलवाओ, इसकी जानकारी पूरी तरह से अखिलेश सरकार को थी। जो गलती की है उसका सजा अखिलेश सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे।
सुनिए, देह व्यापार के चंगुल से निकली लड़कियां सदमे से बाहर कैसे निकलती हैं।
म्यूजिक सुनने से एक अलग सा जो अनुभूति अंदर का होता है, वो म्यूजिक के साथ मैच हो जाता है। म्यूजिक के साथ जब मैं सुनती थी तब मेरा इमोशन बोलो, जो अंदर का जो भावना था वो सब कुछ बाहर आती।
समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। मोदी 6 दिवसीय दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान से करेंगे, जहां हेरात प्रांत में वो सलमा सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से दोनों देशों के बीच संबंधों के अलग अलग आयामों पर भी चर्चा करेंगे। मोदी इसके बाद कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको भी जाएंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत के व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी पिछले 30 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है, जिसकी वजह से संग्रहालयों, पार्कों और श्मशानों को बंद करना पड़ा है। फ्रांस की पर्यावरण मंत्री सिगोलिन रॉयल ने कहा है कि सेन नदी की बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि हालांकि बाढ़ का पानी उतरने लगा है, इससे लोगों को राहत मिल सकती है। यूरोप में बाढ़ की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सिगोलिन रॉयल ने ये कहा, पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन मुझे गवर्नर ने बताया है कि पानी का स्तर 90 सेंटीमीटर घटा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग हल्की सी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब भी सावधान रहना है। ये थे सिगोलिन रॉयल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात कमेटी ब्राजील में होने वाले रियो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हजारों खिलाड़ियों और लोगों पर जीका वायरस के असर पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करने जा रही है। अगस्त में रियो दे जेनेरो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि संगठन ये फैसला नहीं ले सकता कि खेल रद्द कराए जाए या नहीं, लेकिन अब तक कई खिलाड़ी जीका वायरस के संक्रमण को लेकर चिंता जता चुके हैं। पिछले साल कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें जीका वायरस से पीड़ित महिलाओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया था जिनका मस्तिष्क ठीक से विकसित नहीं हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राजनयिकों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सीरियाई सरकार से रविवार को उसके कब्जे वाले इलाकों में भुखमरी के कगार पर रह रहे लोगों के लिए सहायता हवाई जहाज़ों से पहुंचाने की इजाज़त मांग सकती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सीरिया से मिल रहे संकेतों के मुताबिक इन इलाकों में हवाई जहाज़ के इस्तेमाल की इजाज़त शायद नहीं मिलेगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ने 17 इलाकों में से 12 इलाकों को ही मदद के लिए खोला था और 3 इलाकों को आंशिक रूप से खोला गया है। ब्रिटेन ने इस मदद को बहुत देर से पहुंचने वाली बहुत थोड़ी मदद बताया है। वहीं फ्रांस ने कहा है कि फिलहाल जो मदद दी जा रही है वो समुद्र में एक बूंद के समान है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। जैसा कि अभी आपने मुख्य समाचारों में हरिता कांडपाल से सुना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा के पहले चरण में वे अफगानिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार अफगानिस्तान जा रहे हैं। अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम है? क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी तरह का समझौता होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने काबुल में बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर से बात की।
सलमा डेम जो है गुज़श्ता 13 सालों में अफगानिस्तान में बनने जाने वाली सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो इंडिया की माली मदद से बनाई गई है और ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा अहम बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और इसको अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती की संगी बुनियाद करार दिया जा रहा है। आज ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान के सदर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हाथों ये इनॉग्रेट होगा और इसके बाद इसी दिन से सूबे हेरात को बिजली फराहम होगी।
भारत जिस तरह से अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उसकी सिक्योरिटी में भी मदद करे, तो क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है?
गुज़श्ता एक दहाई में भारत की जो इन्वॉल्वमेंट थी अफगानिस्तान में वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से खासकर जब से नेटो फोर्सेज की अक्सरियत फोर्सेज तकरीबन 40,000 से ज्यादा अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुके हैं, उसके बाद अफगान हुकूमत कई बार भारत से मुतालबा किया है कि फौजी सेक्टर में भी अफगानिस्तान की मदद करे। जहाजों की और हैवी वेपन्स के हवाले से अफगानिस्तान ने कई बार डिमांड किया है और जब सबक सदर हामिद करजई के जमाने में इस हवाले से मुजाकिरात बहुत आगे तक पहुंचा था, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत बनने के बाद ये मामला थोड़ा फीका पड़ गया। अभी भी अफगान हुकूमत इस हवाले से फौजी या मिलिट्री साजो सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम करने के हवाले से अफगान हुकूमत भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे।
ये थे काबुल में बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर। एक तरफ भारत और अफगानिस्तान जहां एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, वहीं पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ तनाव के संबंधों में रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अफगानिस्तान यात्रा ने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए होंगे। इसे लेकर पाकिस्तान की हुकूमत में क्या कुछ सुगबुगाहट है, जानने के लिए सुशीला सिंह ने ही इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से बात की।
सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात होती है या किसी दौरे की बात होती है तो पाकिस्तान में जो सरकारी हलके हैं वहां पर चिंता जरूर उनको पेश होती है और वो जाहिर भी होती है। तो यकीनन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है या यहाँ की सेना है वो इस दौरे को बड़ी क्लोजली देख रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी। अगरचे ये मोदी साहब का एक दौरा है जिसमें वो वहाँ पर एक डैम का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको इस वजह से भी खसूसी तौर पे देखा जाएगा कि ये उस दौरे के बाद दूसरा दौरा है अफगानिस्तान का मोदी का, जिसमें पिछले दिनों वापसी पर वो लाहौर में ठहरे थे और खसूसी तौर पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर गए थे और एक शादी में भी शरीक हुए थे जिससे ताल्लुकात बहुत अच्छी को एक हैसियत मिली, लेकिन फौरन बाद उसके पठान दोबारा हमला हो गया और ताल्लुकात जो हैं वो फिर फ्रीज हो गए। तो उस पाकिस्तान और इंडिया को लेकर जो रोलर कोस्टर जो ताल्लुकात हैं उसमें को उसी तरह से एक दफा फिर बड़ी तश्वीश के साथ पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा होगा।
ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो चाबहार एग्रीमेंट है जो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ है, इसे लेकर पाकिस्तान के कुछ हलकों में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या दोनों देशों के बीच जो रिश्ते ठंडे पड़े हैं भारत और पाकिस्तान के, इस पर भी कुछ असर पड़ सकता है?
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान की चिंताएं यकीनन अपनी जगह पे होंगी और ये जो नया दौरा है इसको भी उसी नजर से देखा जा रहा है। फिर ये दौरा भी एक ऐसे वक्त हो रहा है कि पाकिस्तान में कल काफी पाकिस्तानी मीडिया ने उस बात को काफी प्रोजेक्शन दी कि जो कि इंडिया के मिनिस्टर की तरफ से बयान आया था कि पठानकोट में न पाकिस्तान की सरकार और ना इसका कोई इदारा मुलविस है और उसके कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो यहाँ पाकिस्तानी मीडिया उसको बड़ा बढ़ चढ़ कर पेश कर रहा था। तो उसके बाद एक मरतबा फिर ये मोदी साहब का अफगानिस्तान जाना काफी यहाँ पर चिंता क्रिएट करेगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान यात्रा पर पाकिस्तान की होगी पैनी नजर। ये थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कार्यक्रम में रुख कर रहे हैं भारत का, जहां उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से मशहूर मथुरा में हिंसा थमने के बाद सियासी बयानबाजी रफ्तार पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को भी अखिलेश यादव सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया है। वहीं मथुरा की इस घटना से जुड़ी कई परतें एक के बाद एक उजागर हो रही हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल यूं तो छोटी मोटी घटनाओं को लेकर भी आजकल सजग हैं। ऐसे में यदि मथुरा जैसी घटना हो जाए तो सरकार को हर तरफ से घेरने का मौका भला कहां छोड़ेंगे। गुरुवार देर रात से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को दिन भर चलता रहा और शुक्रवार की सुबह से ही नेताओं की चहलकदमी भी शुरू हो गई। शुरुआत की भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने। श्रीकांत शर्मा ने न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि पार्क पर अवैध कब्जा करने वालों को सरकार के शह देने का भी आरोप लगाया।
आपने जानबूझकर पुलिस अधिकारियों को मरवाया है, इसके पीछे षड्यंत्र है। पहले जमीन पर कब्जा कराओ और फिर अपने जो प्यादे हैं, जो गुर्गे हैं, उनसे पुलिस पर गोली चलवाओ। तो इसकी जानकारी पूरी तरह से अखिलेश सरकार को थी और अखिलेश सरकार ने जो गलती की है उसका सजा अखिलेश सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमने मांग की है कि उन लोगों को कौन बसा रहा था, उनको उनके राशन कार्ड कौन बनवा रहा था, राशन की दुकानें वहां कौन खुलवा रहा था, उनको मकान बनाने की परमिशन कौन दे रहा था, इसीलिए हमने सीबीआई की मांग की है।
हालांकि इधर श्रीकांत शर्मा राज्य सरकार को घेरने में लगे थे, वहीं मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी को अपने संसदीय क्षेत्र में हुई इतनी बड़ी घटना की कोई जानकारी नहीं थी और वो अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी। हेमा मालिनी की ये राजनीतिक निष्क्रियता दिन भर लोगों में चर्चा का विषय रही। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अवैध कब्जाधारियों को प्रशासन ने कम करके आंका।
साधु संत के उनके प्रभाव में आकर के या उनके वजह से वहाँ धरना दे करके और सरकार की जमीन पे बैठे थे। पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए था लेकिन जानकारी में नहीं था कि इतना कुछ उनके पास होगा।
लेकिन उन्हीं के शासन काल में ये लोग इतने मजबूत कैसे हो गए, इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं था। मथुरा पहुंचने वाले नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री भी थे और उन्होंने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनहीन गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री का परिचय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनका ये पूर्ण रूप से फेलियर है, सरकार की मशीनरी का फेलियर है और मैं समझता हूं कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा केंद्र की जो सरकार है, और मैं विशेषकर राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो महामहिम गवर्नर से रिपोर्ट मंगाकर इनको बर्खास्त करें।
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर अभी रुकने वाला नहीं है। पार्टियां इस मामले में सरकार को अभी और घेरने की रणनीति तैयार कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के विरोध में रविवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की घोषणा की है।
ये थी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि मथुरा में हुई हिंसा के मामले में 320 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इस बारे में बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि कानून व्यवस्था इतना कैसे बिगड़ गई।
जब ये आदेश पारित हुआ कि इसको खाली कराया जाना है और उसी समय से वो लामबंद हो गए कि हम किसी भी तरह से इस क्षेत्र को खाली नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए और जब इस प्रकार की जब आमना सामना हुआ तो जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा फायर किया गया। गुरेला वारफेयर की तरह उन्होंने उनके ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर फायर किया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जबकि पुलिस के द्वारा तो सिर्फ एक पेट्रोलिंग की जा रही थी और उनको इतला दी जा रही थी कि इल्लीगल है, उसको वो खाली कर दें। इतनी बात पर वो प्रवोक होके उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया।
ये गुट कौन है, कोई स्वाधीन भारतीय विधिक संगठन या किस तरह करके कोई ग्रुप, ये क्या ग्रुप है सर?
ये ग्रुप जय गुरुदेव ग्रुप का एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो जिनकी अपनी आपस में उनका संघर्ष चल रहे हैं। वही किसी जमाने में इस पार्क में आके रुके होंगे और तब से उन्होंने इसका जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिया।
दलजीत सिंह जी, आप प्रशासन है, 3000 लोग इकट्ठा हैं, असलहा लोग गुरिल्ला तरीके से आप पर कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं, आप चले जाते हैं और आप पर अटैक।
इसीलिए शासन के द्वारा एक जांच बैठा दी गई है जिसकी जांच कमिश्नर अलीगढ़ द्वारा की जाएगी।
प्राइम एफएससी, आपको लगता है कि इनएफिशिएंसी हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो मानेंगे आप?
पहला प्रयास यही था कि बिना किसी लाठी डंडा गोली चलाए एक तरीके से विधिवत तरीके से उनको खाली कराया जाए। इस चीज का अंदाजा नहीं रहा उस दिन, पर्टिकुलरली उस जिस दिन ये घटना हुई, कि वो इतने उग्र रूप धारण कर लेंगे। और
सारे कल्प्रिट्स आपने पकड़ लिए हैं कि आधे
लगभग 320 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
कहा जा रहा है राम वृक्ष यादव करके कोई व्यक्ति है जो कि मुखिया था इस संगठन का, इसकी आप तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको पकड़ लिया है लेकिन आप बता नहीं रहे।
जैसे आप जानते हैं कि लगभग 22 लोग मृत्यु हुई है, कई लोग अभी सभी ज्यादातर लोग अनआइडेंटिफाइड हैं। हो सकता है कल को कोई आइडेंटिफिकेशन हो पाए, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, अभी हमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि हम लगातार तलाश करते रहेंगे।
मथुरा में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश जारी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी से बात कर रहे थे विनीत खरे।
बीबीसी इंडिया बोल।
अत्यधिक बल का इस्तेमाल हो या कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण में असफलता, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। क्या भारतीय पुलिस अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पाई है? यही है शनिवार 4 जून को प्रसारित होने वाले इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमें मुफ्त फोन करें 1811-7001 1811-7001 पर। इंडिया बोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
आज है 4 जून दिन शनिवार, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर अभिनंदन। कार्यक्रम में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। हरिता कांडपाल अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, आज ज़्यादातर अखबारों में जाहिर है मथुरा वाली खबर सबसे प्रमुखता से छाई है, हर अखबार में इसी को प्रमुखता दी गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि स्वाधीन भारत सुभाष सेना के 50 तथाकथित सत्याग्रहियों जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, घायल हुए थे ये गुरुवार की झड़प में, उन्होंने ये बताया कि उनके नेता ने उनसे ये कहा कि वो 2 महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिल पाएंगे और उसके बाद इतिहास बदल जाएगा। अखबार के मुताबिक ये सब काफ़ी गरीब, कुपोषित और दिशाहीन और कुछ उस तरह के लग रहे थे। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मथुरा का विवाद बेहतरीन तरीके से छुपाया गया राज, पुलिस और अदालत के नाक के नीचे सेना और असलहा फल फूल रहा था और किसी को पता भी नहीं चला कितना बड़े पैमाने पर इन्होंने हथियार जमा कर लिए। और हिंदू अखबार ने इस पर लिखा है कि मथुरा में खूनी संघर्ष के दूसरे दिन हथियारों का जखीरा मिला। इस तरह सारे अखबारों में ये खबर छाई है। एक और खबर जिस पर मेरी नज़र पड़ी, हिंदुस्तान अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स ने, अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है अपने पहले पन्ने पर छापी है कि तर्कवादी नरेंद्र डाभोलकर और गोविंद पंसारी की हत्या में एक ही बंदूक का इस्तेमाल किया गया क्या। इसी सवाल पर सीबीआई जो जांच कर रही है इस मामले की, वो स्कॉटलैंड यार्ड की मदद लेगी, तो इसके लिए स्पेशलाइज टीम की मदद ली जाएगी और ये पता लगाया जाएगा क्या एक ही बंदूक से की गई ये हत्या। सीबीआई के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की थी। इसके अलावा द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में जन लोकपाल बिल को लेकर ठन गई है और केंद्र गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस बिल को मौजूदा स्वरूप में पास नहीं किया जा सकता। इसमें जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच की शक्ति देना, 6 महीने के अंदर जांच करने के बाद मुकदमा शुरू करना और भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर कुछ आपत्तियाँ हैं। इसके अलावा एक और खबर है अंग्रेजी अखबार पायनियर और हिंदुस्तान टाइम्स और इसके अलावा मैं हिंदुस्तान अखबार में भी देख रही हूँ, इन सब अखबारों ने इस खबर को लिया है कि दिल्ली का जो मशहूर अपोलो अस्पताल है, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, उसमें किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हम चलते हैं जनसत्ता। जनसत्ता ने खबर छापी है कि एनआईए प्रमुख ने पाक को बेदाग बदाग कराई फजीहत। ये पठानकोट हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख शरद कुमार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पठानकोट हमले को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद की मदद में अब तक पाकिस्तान सरकार या किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो इस पर वो फंस गए हैं।
बहुत शुक्रिया। और अब एक विशेष रिपोर्ट। कभी सोचा है आपने कि जिन लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल से छुड़ाया जाता है वो इस धंधे में लगे सदमे से किस तरह उबरती होंगी, उबर पाती होंगी भी या नहीं? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने कोलकाता में जो देखा सुना समझा जाना, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
महानगरी मुंबई के एक डांस बार में देर शाम का नजारा कुछ ऐसा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश में कई दूसरी जगहों पर भी कमोबेश ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां रंग बिरंगे कपड़ों में ये लड़कियां नाचकर ग्राहकों का मन बहलाने का काम करती हैं। सिर्फ शराब और संगीत नहीं, ये जिस्म फरोशी की मंडियां हैं, जहां देश के विभिन्न इलाकों से लड़कियों को यहां लाकर बेचा जाता है। सुदूर गांव से मंडी तक का सफर मानसिक और शारीरिक यातनाओं से भरा होता है, जो इन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। इन्हीं में से एक हैं पश्चिम बंगाल के 24 परगना की रहने वाली ये युवती।
जी, मैंने रुकने के बाद हमको वहीं पर वेस्ट बंगाल, मतलब बम्बई पुलिस था, बम्बई पुलिस में रेड गिरा था। तो रेड गिराने के बाद हम लोग पूछ रहे थे, तो अपना मर्जी से काम कर रहे हैं? बोला नहीं, आप लोग अपना मर्जी से काम नहीं कर रहा। तो बोल रहे तुमको जो जो वस्ते ले आया, तो हाँ ले दे। तो उसके बाद बोला तुम लोग क्या घर जाना या कहीं पर रुकना? तो हम लोग बोले हम लोग घर में जाना है।
कोलकाता में ऐसी तस्करी की शिकार हुई लड़कियों के बीच काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बैताली गांगुली कहती हैं।
नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ओपन द बियाबा द डस्ट बस नाउ रेड लाइट एरिया।
बैताली कह रही थी कि ऐसी लड़कियों को बचाने के लिए बड़ा अभियान तो चलाया जा रहा है, मगर सबसे बड़ी चुनौती है उनके पुनर्वास की, क्योंकि यातना और शोषण के बाद इनमें मनोवैज्ञानिक अस्थिरता के लक्षण पैदा हो जाते हैं। वहीं देह व्यापार के लिए तस्करी का शिकार हुई ऐसी ही लड़कियों को ट्रॉमा यानी अवसाद से बाहर निकालने के लिए सामाजिक संगठनों ने संगीत और नृत्य का सहारा लिया है। संवेद नाम का एक गैर सरकारी संगठन तस्करी का शिकार हुई इन लड़कियों को उनके पुनर्वास केंद्रों पर ही जाकर संगीत और नृत्य के माध्यम से जिंदगी को दोबारा जीने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। आखिर क्या है ये डांस थेरेपी? संवेद की सोहिनी चक्रवर्ती कहती हैं,
मेजर एनी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक हो सकता है, बट मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम यूज करते हैं, क्योंकि वर्ड भी यूज करते हैं, बट वर्ड में कभी कभी वो इन्फ्लुएंस करता है ब्रेन को, थिंकिंग पैटर्न को, वापस हम प्रोसेस में भी यू नो अप डाउन करते हैं। दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ इशू, बट कभी कभी वो हमारे थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट इंस्ट्रूमेंट में वो ज़्यादातर नहीं होता है, बट हम दोनों ही यूज करता है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल लेस।
बंगाल के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में बरामदगी के बाद आई तस्करी का शिकार हुई कुछ पीड़ितों ने कहा कि जब उन्हें रेड लाइट इलाके में बेचा गया था, तब वो बिल्कुल टूटी हुई थी।
मैं खुद चुपचाप से रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, मेरा सहेली ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगते थे मुझे कुछ कमी है, मेरा से सहेली होने के लिए कमी कम है। तो जब मैंने सोचा, जब DMT किया, तब मुझे लगा नहीं, ये माध्यम मुझे पता नहीं था।
कोलकाता के पुनर्वास केंद्रों में रहने वाली कई ऐसी लड़कियां हैं जो खुद संगीत और नृत्य के इस अवसाद से उबर तो गई हैं, मगर अब वो बतौर प्रशिक्षक पुनर्वास केंद्रों में ही रह रही दूसरी लड़कियों को अपनी जिंदगी दोबारा जीने के लिए प्रोत्साहित कर रही
हैं। बहुत हेल्प करता है खुद के लिए। तब मेरे लिए ये प्रॉप्स और ये म्यूजिक बहुत हेल्प किया था, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है, जब म्यूजिक सुनने से एक अलग सा फीलिंग, अलग सा जो अनुभूति अंदर का होता है, वो म्यूजिक के साथ मैच हो जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि म्यूजिक के साथ जब मैं सुनती थी, तब मेरा इमोशन बोलो, जो अंदर का जो भावना था, वो सब कुछ बाहर आते थे। तो इसके वजह से क्या होता, कभी कभी मैं वायलेंट हो जाती थी, कभी कभी स्टॉप हो जाती थी, कभी कभी किसी के साथ बात भी नहीं, क्लास में एक दो क्लास में तो मैं बाहर ही चली जाती थी।
कभी डांस बार और रेड लाइट के इलाकों के संचालक संगीत और नृत्य के जरिए तस्करी का शिकार हुई ऐसी लड़कियों को गर्त में धकेलने का काम करते थे। आज शोषण के बाद ट्रॉमा यानी अवसाद से बाहर निकलने के लिए संगीत और नृत्य ने ही इन्हें सहारा दिया है। सलमान रावी, BBC कोलकाता।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और बात अब खेल की खबरों की। पेरिस में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेस हिंगिस की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के खिलाड़ी इवान डोडिक की जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-8 से हराया। खेल की बाकी खबरें सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल की हार के साथ ही कल भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। आठवीं वरीयता के साथ खेल रही साइना नेहवाल का सामना कल क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मरीन से था। मरीन ने साइना नेहवाल को 47 मिनट में 24-22, 21-11 से मात दी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताई जू यिंग ने पांचवी वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-18, 13-21, 21-8 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंगवेई ने गैर वरीयता हासिल चीन के तांग झिंग मिंग के खिलाफ तब जीत हासिल की जब वो पहला गेम 21-16 से जीत गए, लेकिन दूसरे गेम में जब स्कोर 9-2 था तब वांग झिंग मिंग मुकाबले से हट गए। वही साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल खेले गए सेमीफाइनल में उन्होंने 13वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-2, 6-1, 6-4 से मात दी। फाइनल में जोकोविच का सामना ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 से हराया। फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग का फाइनल भी तय हो गया है, जो शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स और चौथी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा के बीच खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स ने नीदरलैंड्स की बर्टेंस को 7-6, 6-4 से और दूसरे सेमीफाइनल में गार्बिने मुगुरुजा ने ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टोसुर को 6-2, 6-4 से मात दी। उधर ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे चार देशों के महिला हॉकी टूर्नामेंट में कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 2-1 से मात दी। इससे पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने 4-1 से हराया, जबकि दूसरे मैच में भारत ने जापान को 1-1 से बराबरी पर रोका था।
खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन उससे पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा शुरू कर रहे हैं। मोदी 6-दिवसीय दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान से करेंगे, जहां हेरात प्रांत में सलमा सेतु का उद्घाटन करेंगे। मोदी कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको भी जाएंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत के व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देना होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी पिछले 30 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है। हालांकि फ्रांस की पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि सेन नदी के बढ़ते जलस्तर में कुछ गिरावट देखी गई है और सरकार सतर्क है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात कमेटी ब्राजील में होने वाले रियो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हजारों खिलाड़ियों पर जीका वायरस के असर पर चर्चा के लिए एक बैठक करने जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में नदी में गुरुवार को गिरे एक ट्रक हादसे में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की हालत खराब है। उन्हें खराब तबीयत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यमन में केतियास शहर में रॉकेट हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे हैं। माना जा रहा है कि शिया विद्रोहियों के मिसाइल दागने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि शहर के बाजार के इलाके में स्थानीय शिया विद्रोहियों का कब्जा है। अमरीका के न्यूयॉर्क में राजनयिकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सीरियाई सरकार से रविवार को उसके कब्जे वाले इलाकों में भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों के लिए सहायता पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों के इस्तेमाल की इजाजत मांगेगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सीरिया एस की इजाजत दे, इसके संकेत कम हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक 1 घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।